ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। विधि भक्ति साधनेरा कैला विवरण रागानुगा भक्ति लक्षण सुना सनाता। विधि भक्ति साधनेरा कैला विवरण रागानुगा भक्ति लक्षण सुना सनाता। विधि भक्ति साधने र कैला विवरण रागानुगा भक्ति लक्षण सुन सनातन। हे सनातन, साधन भक्ति का मैं वर्णन किया, अब रागानुगा भक्ति का लक्षण सुनो। सनातन गोस्वामी को भगवान कहां उपदेश कर रहे हैं? प्रयागराज में कि बनारस में? इसके पहले विधि भक्ति का वर्णन किया, उसमें तीन श्लोक रह गया है। ज्ञान वैराग्य आदि भक्ति कभू न है अंग, जम नियम आदि बोले वो कृष्ण भक्त सं। भगवान ने कहते हैं कि भक्त को कोई आवश्यकता नहीं होती है ज्ञान वैराग्य की, भक्ति से ही सब कुछ हो जाता है। तस्मान मद भक्ति युक्त योगिन वही मदात्मन न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवे दिह। जो भक्त मदात्मा है, मुझमें जिसका चित्त लगा हुआ है, अविष्ट है और मेरी भक्ति से युक्त है, ऐसे योगी के लिए, भक्त के लिए ज्ञान और वैराग्य कोई श्रेय नहीं दे पाते हैं। इस श्रेय साधन नहीं है भक्त के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बोले, मदात्मा मदात्मन और मद भक्ति युक्तस्य, मेरी भक्ति में लगा हुआ है और उसका चित्त मुझ में आविष्ट है, उसको कोई जरूरत नहीं है ज्ञान वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य प्रायः उसके लिए श्रेय साधन नहीं है। बहुत ऊंची बात है कहें ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं है, उसमें ज्ञान का फल वैराग्य का फल अपने आप रहता है। जिसका चित्त कृष्ण में आविष्ट होगा उसको वैराग्य की क्या जरूरत है? सपने में भी कहीं आसक्ति है ही नहीं, कृष्ण में आसक्ति है। एते न यद्भुता राजन तव नहीं, एते न यद्भुता व्याध तवा हिंसा दयो गुणः हरिभक्ते प्रवृत्ता ये नते सिहु परता बिना। एक बार की कथा है, जब मृगारी भक्त बन गया प्रसिद्ध व्याध, तो उससे मिलने के लिए श्री नारद जी अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ गए देखने के लिए कैसा भजन कर रहा है। एक समय ऐसा था जो जीवों की हत्या किया करता था, तीर मार मार करके अधमरा करता था, और नारद जी के उपदेश से वैष्णव हो गया। तो जब श्री नारद जी और श्री पर्वत मुनि गए मिलने के लिए, तो उनको देखते ही दूर से हर्ष से उल्लसित हो गया, नाचने लगा और आया निकट में, जब प्रणाम किया तो प्रणाम करने के पहले वहां कुछ चीटियां थी, कीड़ी थी, उसको कपड़ा से धीरे धीरे हटा रहा था कि कोई चीटी न दब पावे प्रणाम करने। वही हिंसक व्याध है जो पशुओं की हत्या करता रहता था, आज कोई भी कीड़े को नहीं मार रहा है, इतना शुभ गुण उसमें आ गया है। तो भगवान की भक्ति में जो प्रवृत्त रहते हैं ते न सिंह परता बिना, दूसरे को दुख नहीं देते, उनमें वैराग्य और ज्ञान सब कुछ अपने आ जाता है। वह व्याध मृगारी केवल भक्ति में लगा हुआ था, उसका चित अविष्ट था, नाम कीर्तन कर रहा था और प्रणाम करने में ध्यान रहा कि कोई चींटी न दब जाए, कोई कीड़ा न दब जाए। यहां तक श्री भगवान ने विधि भक्ति का वर्णन किया। अब वे कहते हैं कि रागानुगा भक्ति का लक्षण सुनो। रागानुगा भक्ति एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है, सबको जानकारी है, विशेष करके गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों को सबको मालूम है रागानुगा भक्ति। तो उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है, उसके क्या लक्षण है, इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। यही बताने के लिए, सिखाने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। अनर्पित चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पित मुन्न प्रज्वल रसांश भक्ति श्रेयम। जिस भक्ति को भगवान दीर्घ काल से नहीं दिए थे इस लोक में, उसका दान करने के लिए अवतार लिए माता सची के गर्भ से, यही चैतन्य महाप्रभु का सर्वश्रेष्ठ दान है। तो बता रहे हैं विधि भक्ति साधन एलक, ऐसे हम सुन रहे थे, ठीक से बैठे। विधि भक्ति साधन एलक कैला विवरण, रागानुगा भक्ति लक्षण सुना सनातन। रागानुगा भक्ति का लक्षण क्या है भगवान बता रहे हैं, इसको श्रीमद भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है। इष्टे स्वालसिकी राग परमाविष्टता भवे तन्मय्या भवे भक्ति। अच्छा अत्र है सात्र रागात्मिको दिता, रागात्मिका भक्ति किसको कहते हैं, लगनगा तो बाद में आएगा। इष्ट में भगवान श्री कृष्ण में जो स्वारसिकी स्वाभाविकी राग है, स्वारसिकी राग है और परम आविष्टता है, तो इस प्रकार की भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। यह रागात्मिका भक्ति केवल ब्रजवासियों में रहती है, किसी में संभव नहीं है, ये साधन से कभी नहीं मिल सकता है, अपने आप ये रहता है, क्योंकि स्वरूप शक्ति की वृत्ति है हलादिनी शक्ति की, और केवल ब्रजवासियों में रागात्मिका भक्ति होती है और कोई कर ही नहीं सकता है। करेगा महाभाग्यवान साधक होगा तो रागानुगा भक्ति करेगा, ब्रजवासियों के राग का अनुगमन करेगा, पर ये रागात्मिका भक्ति ब्रजवासियों में रहती है। भगवान के दास, माता पिता, सखा और प्रियाओं के हृदय में यह रागात्मिका भक्ति रहती है। इसके स्वाभाविकी राग, स्वाभाविकी राग अपने स्वरस की कार्य अपने रस के अनुसार राग, जैसे मां यशोदा का राग है श्री कृष्ण के प्रति, राग है और गाढ़ आसक्ति, परम आसक्ति स्वाभाविक है और आविष्टता आवेश रहता है। इसका उदाहरण है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो मां यशोदा इतना आविष्ट थी अपने पुत्र में, इतना आविष्ट कि कभी कभी उस माखन निकाल करके और हाथ में लेकर कटोरी में ले करके और आविष्ट थी, कहती थी बेटा कृष्ण इसे खा लो, इसे खा लो खा लो। उसको ये ध्यान नहीं था कि कृष्ण मथुरा चला गया, इतना आविष्ट, इसको आवेश कहते हैं, आविष्टता स्वाभाविक। इसी तरह से सखाओं में आवेश और प्रियाओं में आवेश और रक्तक पत्रक आदि दासों में आवेश, इसको श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इष्टे स्वाद सिकी राग, अपने अपने भाव या रस के अनुसार राग। माता यशोदा का पुत्र भाव होगा वात्सल्य भाव, सखाओं का सख्य भाव होगा, प्रियाओं का माधुर्य भाव, कांता भाव होगा, तो उसको स्वरसिकी राग कहा गया, अपने रस के अनुसार राग, अपने भाव के अनुसार। और परमाविष्टता भवे तन्मयी या भवेत भक्ति शास्त्र रागात्मिकोदिता, इसी को रागात्मिका कहा गया। स्वाभाविक राग और परमाविष्टता, यह राग ही परमाविष्टता धारण करता है। राग का क्या अर्थ है? जो ब्रजवासियों के हृदय में भगवान के प्रति भाव, उसको राग कह रहे हैं। राग राग का अर्थ है जिसके बिना रहा न जाए, स्वाभाविक चित्त की धारा जिसमें लगी रहे, इसको क्या कहेंगे? आसक्ति शब्द से व्यक्त नहीं हो पाएगा। जो परम 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 आसक्ति कहिए, आसक्ति की सीमा, उसको राग कहते हैं। ये राग जिसकी आत्मा है उसको रागात्मिका भक्ति कहेंगे। ब्रजवासी भगवान कृष्ण से क्यों प्रेम करते हैं? इसमें कोई कारण नहीं है, बस करते हैं, यही उनका स्वभाव है। न मुक्ति के लिए, न भुक्ति के लिए, न इसके लिए, न उसके लिए, कोई फलानुसंधान है ही नहीं। स्वाभाविक कृष्ण में राग है, उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं, क्योंकि उसमें परमाविष्टता होती है और तन्मयता होती है। रागात्मिका भक्ति मुख्य ब्रजवासी जन है, ब्रजवासी जनों में रागात्मिका भक्ति होती है। तार अनुगत भक्ति रागानुगन नाम है, उन ब्रजवासियों के हृदय में जो भगवान के प्रति भाव है, राग है, उसका जब कोई साधक अनुगमन करता है इनके भाव का, तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागात्मिका केवल ब्रजवासियों में संभव है, उसका अनुगमन किया जा सकता है। जैसे मां यशोदा है, उसका वात्सल्य भाव जो कृष्ण के प्रति है केवल उसी में है, दूसरे में संभव नहीं है। या ब्रजवासियों में संभव है, तो उस भाव का जब अनुगमन किया जाता है मां यशोदा की बात सुन करके, जब कृष्ण के प्रति उसी तरह से वात्सल्य भाव से सेवा की जाती है, सेवा का भाव उत्पन्न होता है, सेवा करने का, और मां यशोदा का या यशोदा की सहेलियों का और जो माताएं हैं कृष्ण का पालन करने वाली, उनके भाव का जब अनुगमन किया जाता है, तो इसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागानुगा भक्ति और सखाओं का, भगवान की प्रियाओं का, गोपीजनों का, अरदास आदि, इनके भाव का अनुगमन किया जाता है। जैसे गोपी भाव का अनुगमन किया जाता है, तो गोपी में तो सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं श्री राधा, इनके भाव का अनुगमन डायरेक्ट नहीं किया जाता है। राधा रानी की सखियां हैं श्री ललिता विशाखा आदि, और उन सखियों का साथ देने वाली और बहुत सी सखियां हैं, और उनके पीछे रह करके जो सेवा करती हैं उनका नाम है मंजरी। कई मंजरी हैं, स्वरूप मंजरी, विलास मंजरी, रति मंजरी इत्यादि। तो सखियों के पीछे रह करके सेवा करनी होती है, राधा कृष्ण की सेवा करनी है। वो करते ही रहते हैं, चूंकि राग ही प्रेरक है, तो उसमें कोई शास्त्र वाक्य या और कोई अनुशासन नहीं है कि यह करो यह करो यह करो। ऐसे परम प्रवीण श्री गुरु के मुख से सुन करके कि मैं इस सखी के पीछे हूं, मेरा नाम ये है, मेरी उम्र ये है, इसे गुरु बताते हैं, मेरी उम्र ये है, मैं इस प्रकार का वस्त्र पहनी हूं और मेरी ये सेवा है, चामर डुलाने की या कुछ भी अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, चित्र बनाने की या श्री प्रिया प्रीतम के सामने नाचने की, अलग अलग सेवा होती है। ये गुरु से सीखा जाता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो उस प्रकार उनके अनुगत होकर के जो सेवा की जाती है, तब रागात्मिका भक्ति का नाम होता है रागानुगा। रागानुगा इष्टे गाढ़ तृष्णा रागेर स्वरूप लक्षण, इष्टे अविष्टता यही तटस्थ लक्षण। इष्ट में श्याम सुंदर में श्री राधा रानी में जो तृष्णा है, इसको स्वरूप लक्षण बताया गया रागानुगा भक्ति का। स्वरूप लक्षण उसको कहते हैं जो उस वस्तु में हमेशा रहता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। जैसे मिश्री में मिठास होना, ये उसका स्वरूप लक्षण है। मीठापन को अलग नहीं किया जाएगा मिश्री से, उसमें रहता ही है, लेकिन अब उसका मिश्री का साइज वगैरह बदल सकता है, बड़ा ढोका या छोटा है, ये सब किया जा सकता है। कई लक्षण होते हैं, उनको तटस्थ लक्षण कहते हैं। कैसे पता चलेगा कि मिश्री है? तो उसका रंग कुछ उजला होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तटस्थ लक्षण। जिससे उस वस्तु का ज्ञान हो उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। उस वस्तु में वो सब समय नहीं रहता है, कभी कभी प्रकट होता है, स्वरूप लक्षण हमेशा रहता है। तो इष्टे गाढ़ तृष्णा, तृष्णा का अनुभव हम सबको है। तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। जब किसी को पानी पीने को नहीं मिला हो और पानी पीने के लिए जो उत्कंठा होती है, जो व्याकुलता होती है, इसको तृष्णा कहते हैं। तृष्णा श्रीकृष्ण की सेवा पाने के लिए, श्रीकृष्ण को पाने के लिए जो गाढ़ तृष्णा होती है, जो प्राण छटपटाने लगता है, लगता है अब जीवन नहीं बचेगा यदि कृष्ण नहीं मिलेंगे तो इसको कहते हैं तृष्णा। तो यह तृष्णा ही रागानुगा भक्ति का स्वरूप लक्षण है, और तटस्थ लक्षण है आविष्टता। उस भक्त के इंद्रियों को देख करके, आंख को देख करके, वाणी को सुन करके पता लगाया जा सकता है कि इसमें यह आवेश है, भक्ति है इसमें। जैसे उसका वचन, उसमें बहुत विकार होते हैं, गदगद वाणी हो जाती है, बोला नहीं जाता, स्तंभ होता है, कई प्रकार के स्वरूप तटस्थ लक्षण है। इसके गाढ़ तृष्णा रागेर स्वरूप लक्षण, और इष्टे आविष्टता एक तटस्थ लक्षण, इष्ट में आवेश। कभी कभी तो ऐसा भी श्री गोपीजनों को होता है कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, जब उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के गए तो श्री राधा रानी कहती हैं, तुम पागल हो गए हो, मेरा संदेश मुझको ही सुना रहे हैं। ऐसे बोलती हैं, उनको यही भाव है कि मैं कृष्ण हूं। इतना आवेश है, आवेश के कारण, यह नहीं कि अहम ग्रह उपासना है कि मैं ही भगवान हूं, ऐसे भाव नहीं है, आवेश है। मैं रमणी नहीं हूं, आप रमण नहीं हैं, ऐसे राधा बोले, विद्यापति ठाकुर ने लिखा है। तो कभी कभी बिल्कुल भ्रम हो जाता है, भ्रम उसको प्रेम वैचित्र कहते हैं। वियोग में कृष्ण के नैकट्य की स्फूर्ति होती है, कृष्ण हमारे पास हैं, और संयोग में ऐसा भाव होता है कृष्ण नहीं है। संयोग में ऐसे प्रेम वैचित्र उसको कहते हैं, संयोग में ऐसा भाव होता है कृष्ण नहीं है, ये आवेश के कारण, और वियोग में ऐसा अनुभव होता है कि मैं तो साथ नहीं हूं, मैं ही हूं कृष्ण मेरे साथ। उसी को कहते हैं, उद्धव तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौरे, जोग कहां रखे हैं रोम रोम श्याम है। कोई जगह होगी तब न जोग की पत्रिका रखेंगे, रोम रोम में श्याम बसा हुआ है, पत्र कहां रखें, कोई खाली जगह हो तब न। उद्धव तुम भय बौरे, तुम पागल हो गए हो, पाती लेके आए दौरे, योग कहां रखे यहां रोम रोम श्याम। इस प्रकार की आविष्टता, रागमयी भक्ति है रागात्मिका नाम, जो रागमयी भक्ति है स्वाभाविक उसका नाम है रागात्मिका, और तहा सुनी लुब्ध है कौन भाग्यवान। ब्रजवासियों के राग को सुन करके, उनके प्रेम को सुन करके कोई कोई महाभाग्यवान उस पर लुब्ध होता है, लोभ होता है कि मैं माँ यशोदा जैसा हूं, माँ यशोदा जैसी सेवा करूं, सखाओं जैसी सेवा करूं, भगवान के दासों जैसी सेवा करूं, और भगवान की प्रियाओं के समान मैं भी कृष्ण की सेवा करूं। जो सेवा की ये वासना होती है ब्रजवासियों के भाव के अनुसार, ये किसी किसी भाग्यवान में ये भावना उदित होती है, सबको नहीं होती है। कौन भाग्यवान, इस संसार में देख ही रहे हैं तथा कथित अनेक वैष्णव ही हैं, लेकिन कृष्ण सेवा पाने की ऐसी लालसा, वही ब्रजवासियों के अनुसार, ब्रजवासियों के भाव के अनुसार सेवा पाने की का लोभ किसी किसी व्यक्ति में हो पाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रागमयी भक्ति है रागात्मिका नाम, रागमयी भक्ति का, प्रेममयी भक्ति का अर्थ है रागात्मिका, और तहा सुनी लुब्ध है कौन भाग्यवान, उसको सुन करके कोई भाग्यवान लुब्ध होता है। तो पहला तो काम है सुनना, दशम स्कंध में पूर्वार्ध में भगवान की ये सब बातें दी गई हैं, सखा कैसे उनसे प्रेम करते हैं, श्री गोपीजन कैसे कर रही हैं, और माँ यशोदा कैसे उनकी सेवा करती है, ये सब बात शास्त्र में श्रीमद् भागवत में दी गई है। तो पहला भाग्यवान तो है जो इसको सुने, और उस पर सुनने वालों में भी महाभाग्यवान वो है जो ब्रजवासियों के भाव पर लुब्ध हो जाए कि हमें ये चाहिए, हमें चाहिए। तो लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगत प्रकृति। लोभ से ब्रजवासियों के भाव का अनुगमन करता है, इसको रागानुगत भक्ति कहते हैं, और यहां पर शास्त्र युक्ति नहीं मानता है। वो शास्त्र के जो उदाहरण है, कमांड है, विधि निषेध है, उसको नहीं मानता है। ये रागानुगत की प्रकृति है, वो राग ही उसको प्रेरित करता है, तो वहां शास्त्र कहां से रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मना किया गया है कि रसगुल्ला नहीं खाना है, ऐसे को मीठा नहीं खाना है, उसको मान लीजिए डायबिटीज है या कुछ है, तो शास्त्र का आदेश है कि डॉक्टर का आदेश है कि मीठा नहीं खाना है, लेकिन उसे रसगुल्ला मिल जाए बहुत सुंदर सुंदर उजला उजला और दूसरे लोग खा रहे हों, दूसरे को खाते हुए देखे, यदि उसके मन में लोभ होगा तो डॉक्टर का अनुशासन नहीं मानेगा, खाएगा, देखा जाता है। तो इस तरह से शास्त्र का अनुगमन यहां काम नहीं करता है, चाहे विधि वाक्य हो या निषेध वाक्य हो, ये रागानुगा की प्रकृति है, ये स्वभाव है। शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगा प्रकृति, बस लोभ हो जाना चाहिए। अगर किसी महाभाग्यवान व्यक्ति में ब्रजवासियों के भाव का लोभ हो गया है कि मैं ऐसे कृष्ण की सेवा करूं, तो फिर उस शास्त्र युक्ति वहां चलती ही नहीं है, चलता है केवल कृष्ण में महाराग अटैचमेंट, वही प्रेरित करता है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रजवासियों के राग का श्रवण करना बहुत आवश्यक है, यदि कोई इसको चाहता है तो। पहला है श्रवण, उसी को भगवान चैतन्यनाथ प्रभु कहते तहा सुनी लुब्ध है कौन भाग्यवान। कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति इसको सुनकर लुब्ध होता है। चल लोभ हो जाए एक अलग बात है, लोभ होगा तो फिर वो साधन करेगा, ये रागानुगा भक्ति ऐसे ही नहीं मिल जाती है। पहले तो लोभ होगा, सुनेगा, इसका लोभ होगा, लोभ होगा तो लोभ होने से ही फिर कोई चीज मिल जाता है। मान लीजिए किसी को बहुत बड़ा लोभ है कि मुझको रसगुल्ला मिले, गुलाब जामुन मिले, इससे थोड़े मिलेगा, लोभ होने से ही केवल नहीं मिल जाएगा, उसके लिए अब साधन करना पड़ेगा, चलकर दुकान में जाना पड़ेगा, अपने पास पैसा है कि नहीं ये भी देखना होगा, है ना, तब न मिलेगा। लोभ होने के बाद उसके अनुसार ब्रजवासियों के भाव को पाने के लिए साधना करनी पड़ती है, और साधना में प्रायः सभी आइटम हैं कुछ छोड़ करके जो साधन भक्ति में है, वही साधन रागानुगा में करना होता है। कुछ को छोड़ दिया जाता है, लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं साधन भक्ति के जिनको करना ही है, जैसे मथुरावास, ब्रजवास और नाम संकीर्तन। ऐसा नहीं कि अगर रागानुगा भक्ति करने लगा तो चुपचाप बैठकर ध्यान करे, ध्यान तो करना ही है, दो तरह से सेवा करनी है, एक साधक शरीर से, देह से, इस देह से करना है, भगवान को प्रणाम करना है, नाम कीर्तन करना है, परिक्रमा करनी है, स्तोत्र पाठ करना है, भागवत पढ़ना है, ये सब तो करना होगा शरीर से। कई साधन है जो कल गिनाया जा रहा था, उसमें से अधिकांश साधन करता है, चाहे वो रागानुगा का रागानुगा भक्ति से चल रहा है, चाहे साधन भक्ति से, दोनों में वो कॉमन है, पर कोई कोई चीज निषेध है, उसके अनुकूल जो नहीं है उसको छोड़ दिया जाता है, जो हमारे रागानुगा भक्ति में अनुकूल नहीं है उसको छोड़ा जाता है। उसमें कई बातें हैं, रागानुगा भक्ति के योग्य प्लेस नहीं है, स्थान नहीं तो स्थान को छोड़ा जाता है, रागानुगा भक्ति का अनुकूल कोई कथा नहीं है तो कथा छोड़ी जाती है, कोई संग ऐसा वैष्णव है लेकिन इसके प्रति लुब्ध नहीं है तो उसका संग नहीं किया जाता। पर साधन भक्ति के सारे लगभग सारे अंगों को फॉलो करना होता है। अब दूसरे तरह से क्यों साधन में लगेगा, लोभ से, ब्रजवासियों के भाव के लोभ से साधन में लगेगा। वैधि भक्ति में शास्त्र के उपदेश से व्यक्ति लगता है, गुरु या आचार्य के आदेश से लगता है, नरक के भय से लगता है, अपने अवगति के भय से लगता है साधन भक्ति में, वैधि भक्ति में। और रागानुगा में वही साधन करता है लेकिन लोभ से करता है। लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति। लोभ से ब्रजवासियों के भाव का अनुगमन करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। लोभ कैसे होगा? सुन करके, सुन करके लोभ होगा। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कह रहे कि देख करके लोभ होगा, सुन कर, क्योंकि ब्रजवासियों को, माँ यशोदा को और श्री ललिता आदि गोपीजनों को और सुबल आदि सखाओं को और रक्तक पत्रक आदि दासों को हम देख नहीं रहे हैं। ब्रजवासियों को जो भगवान की सेवा में आविष्ट हैं, लगे हैं, उनको देख तो नहीं रहे हैं। सुनना ही एक साधन है। सुनते हैं कि ऐसे सेवा करते हैं, ऐसे प्रेम करते हैं, ऐसे करते हैं। सुनने पर कोई भाग्य होगा, बहुत पुण्य होगा कई जन्मों का, तब उस व्यक्ति में लोभ उत्पन्न होगा उस भाव के प्रति, हम भी इस तरह से सेवा करें। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भक्ति गोस्वामी सिंधु में, विराजंतिम अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिशु रागात्मिकाम अनुसृत्य यासा रागानुगोचते। उसी को जो संस्कृत में मूल में है उसी को बंगला में कहा गया पावे, कि जो ब्रजवासी जनों में अभिव्यक्त है, प्रकट विराजती है जो रागात्मिका भक्ति, तो उस रागात्मिका भक्ति का अनुगमन करके जो भक्ति की जाती है वो है रागानुगा भक्ति। तब तद भावादि माधुर्य श्रुते और क्या है आगे, वीर्य जसो अच्छा धीर धीर जब अपेक्षित है, नात्र शास्त्र में युक्ति चौर, अच्छा उसी को बता रहे हैं, उसी का ये मूल है, प्रमाण है, प्रमाण दिए दे रहे हैं। तो बाह्य अंतर यह द्वित साधन, बाह्य साधक देह कर श्रवण कीर्तन। इस रागानुगा भक्ति को दो तरह से किया जाता है, दो करने के तरीके हैं। एक तो बाह्य, बाहर से श्रवण कीर्तन आदि करना शरीर से किया जाता है, साधक देह में इसको किया जाता है, और मन में सिद्ध देह की भावना की जाती है, क्योंकि इस देह में आदमी जो सोचेगा वही दूसरे देह में मिलता है उसको। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है बंगला में, यार पहला अक्षर हमको नहीं आ रहा है, साधक देहे भावे जे सिद्ध देह पावे से, ऐसा कुछ है। तो अक्षर बदल रहा होगा लेकिन भाव यही है कि इस देह से जो भावना करेंगे तो सिद्ध देह में वही मिलेगा। इसीलिए दो तरह से साधन किया जाता है, सिद्ध देह की भावना करके और सिद्ध देह से भावमय देह से सेवा की जाती है। इस मन में अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए ये आठों काल में सेवा की जा सकती है, अष्टकालीन सेवा राधा कृष्ण की। अब ये जग गए हैं, जग करके जा रहे हैं अपने अपने घर, श्री राधा रानी जा रही हैं जावट और श्री कृष्ण जा रहे हैं नंदालय में, तो जगने से लेकर के और रात्रि पर्यंत सब समय भगवान लीला करते हैं श्री राधा रानी के साथ, तो उस लीला के अनुसार जो जो सेवा अपने मन में आया है, जो गुरु ने उपदेश किया उसके अनुसार राधा कृष्ण की सेवा करना, इसको मानसी सेवा करना। तो रागानुगा भक्ति में मानसी सेवा और बाह्य रूप से शरीर से सेवा, बाह्य अंतर यह द्वित साधन बाह्य साधक कहते हैं करे श्रवण कीर्तन। बाहर से क्या करे, क्या साधना करना है, श्रवण और कीर्तन करना है। और भी अंग है लेकिन मुख्य है श्रवण और कीर्तन। भगवान के गुणों को सुनना और खास करके ब्रज बिहारी श्री कृष्ण के गुणों को सुनना, ब्रजवासियों के साथ जो लीलाएं की है उसको सुनना और कीर्तन करना, उसको गाना और विशेष करके श्री महामंत्र का कीर्तन करना, जप करना।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।
यह परम आवश्यक है। तू करता ही रहता है लेकिन जो कुछ भी वो करता है न तो किसी के आदेश से करता है, न शास्त्र के आदेश से, न भय से, उसका लोभ ही उसे कराता रहता है। रगनगर ये प्रकृति है, स्वभाव है, वो लोभ से करेगा। भगवान का नाम गाए बिना रह ही नहीं सकता है, जपे बिना रह ही नहीं सकता है, उसके मुख से नाम निकलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि अब उसे इतना जप करना है, नियम बना दिया गया है तो करे, अब क्या करे, नहीं, ये सब अनुशासन नहीं चलता है वहां कुछ भी। उसके हृदय में जो भगवान के प्रति राग है वही सब कराता है, वो जो लोभ है वही कराता है। तो बाहर से श्रवण कीर्तन और मने निज सिद्ध देह करिया धावन, रात्रि दिन करे राधा कृष्ण रसेवान। भीतर मन में सिद्ध देह की भावना कर, करिया धावन, ये भावना ही करना है ना पहले। तो मने निज सिद्ध देह करिया भावन, निज सिद्ध देह, अपना सिद्ध देह कौन है, भगवान की नित्य लीला में हम जाएंगे हमारा क्या स्वरूप है, इसको तो गुरु बताता है। अवश्य इसको बताने वाला गुरु कोई और ही होता है, जो स्वयं रागानुगा भक्ति का साधक है या सिद्ध हो चुका है वही बताएगा। ये चैतन्य चैतन्य में स्पष्ट बात कही जा रही है, मने सिद्ध देह, मने निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिन करे राधा कृष्ण रसेवान। मन में अपने सिद्ध देह की भावना करके और रात दिन राधा कृष्ण की सेवा करता है। निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे त लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मना है। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, कहां कैसे सेवा करेगा, निजाभीष्ट, जो अपना अभीष्ट है, जो अपना अभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ है, कृष्ण का कोई प्रिय है, सखी है, मंजरी है, कृष्ण प्रेष्ठ, तो उसके पाछे तला गया, उसके पीछे रह करके जैसा आदेश मंजरी करती है, सखियां करती हैं, ऐसे रहो, यहां रहो, ऐसे सेवा करनी है, राग से सब हो रहा है, अनुशासन से नहीं, लेकिन मन में भावना करनी होती है कि भगवान का प्रिय कोई है, कृष्ण का सखा या माता पिता या प्रिया गोपीजन, और उनके पाछे चला गया, उनके पीछे रह करके और निरंतर सेवा करे अंतर मना है। इस तरह से अंतर्मुख होकर के भीतर भीतर मन में राधा कृष्ण की सेवा करता रहता है। यहां हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे ब्रज में पाए जाते हैं जो रागानुगा भक्ति के समर्थक हैं, प्रचारक हैं, वास्तव में जो शास्त्र ही प्रमाण चैतन्य चरितामृत कह रहा है तो, लेकिन एक बात देखी जाती है कि कोई कोई साधक मन में चिंतन करते हैं राधा कृष्ण का, लेकिन बाहर से कीर्तन श्रवण आदि कम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर ही केवल करते हैं, मन में कुछ सोचते ही नहीं है ना। तो हम तो कोई संगति बैठने नहीं आए हैं, जो बात है वो मैं कह रहा हूं। निजाभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठ, कृष्ण प्रेष्ठ, कृष्ण के प्रिय सखी है या दास है, सखा है, माता है, ये कृष्ण के परम प्रिय है। तो कृष्ण अपने अभीष्ट उसमें भी भगवान के बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेष्ठ है, तो उसमें निज अभीष्ट अपना जो प्रिय है। और कोई मान लीजिए मंजरी भाव से भगवान की सेवा करना चाहता है, तो वह मां जशोदा के पीछे नहीं रहेगा, वो मंजरी जशोदा के पीछे नहीं रहेगी, मां जशोदा के पीछे वो किसी सखी के पीछे ही रहेगी। तो इसको कहते हैं निज अभीष्ट, निज अभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे तला गया, किसी कृष्ण प्रेष्ठ के पीछे रह करके, और तो निरंतर सेवा करे अंतर मना है, निरंतर सेवा करे अंतर मना होकर, मन को बिल्कुल भीतर मन में चिंतन करते हुए, मन को बाहर नहीं रखना। तो इससे समझ में आ जाता है कि मन को भीतर रखने के लिए तो वैसा स्थान नहीं चाहिए, नहीं तो बाहर ही हो जाएगा। ये गलियों में नहीं हो पाएगा, इसीलिए ब्रजवास करना होता है इसके लिए। तो दास सखा पिता दी प्रेयसिर गण राग मार्गे यही सब भावे अनुगमन। तो किसका अनुगमन करना होता है, किसके भाव का? दास सखा पिता माता और प्रेयसिर गण, भगवान की प्रेयसियों का, गोपीजनों के समुदाय, राग मार्ग में इन्हीं के भाव का अनुगमन किया जाता है। कृष्णम स्मरण जनम चास्य प्रेष्ठम निज क्या है अनिज समेत वही है निजाभीष्ट। कृष्णम स्मरण जनम चास्य प्रेष्ठम, कृष्ण का स्मरण करता है भक्त, और अस्य प्रेष्ठम भगवान कृष्ण का प्रिय कोई है सखा या माता पिता दास, जो भक्त का सम्मिहित है, अइष्ट है, चाहता है अपने भाव के अनुसार। तो तब तक कथा रथस चासम कुरिया वासम ब्रजे सदा, इस भक्ति को करने के लिए ये उपदेश दे रहे हैं रूप गोस्वामी का, कि तब तक कथा रतः जिस भाव का अनुगमन करना है प्राय उसी कथा में रत रहना चाहिए। तब तक कथा रतः और प्लेस कुरियाद वासम ब्रजे सदा, ब्रज में ही वास करें। लगाने का भक्ति ऐसी नहीं कि सब जगह घूम करके और प्राप्त किया जा सके, जिसको ये लोभ होगा तो ब्रजवास करेगा। ब्रज ही वह स्थान है जहां ये भाव है, ब्रज से बाहर नहीं है। तो वही कथा करनी चाहिए जो अपने भाव के अनुकूल है, नहीं है तो नहीं। ये लगानुगा के साधन बताए जा रहे हैं, दास सखा पित्यादि प्रेयसी गौर राग मार्गे ये सब भाव। इन दो बार छपा है इस किताब में। तो इस प्रकार से भगवान के साथ किस व्यक्ति ने किस भाव से प्रेम किया है, कृष्ण को क्या माना है, ये शास्त्र प्रमाण है श्रीमद् भागवतम में, वे कहते हैं, भगवान कपिल देव कहते हैं, न कर ही चिन्मत परा शांत रूपे लक्षण तीनों में निमिषो ले हेति जैसा महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैव मिष्टम। हे शांत रूपे मेरी जननी, माता देवहूति से भगवान कह रहे हैं कि हे मां, मैं जिनका पुत्र हूं, जिनका प्रिय हूं, जैसा अहम प्रिय आत्मा सुतश्च, जिनका मैं पति हूं, प्रिय हूं, बहुत प्रिय और पुत्र हूं, सखा हूं, गुरु हूं, मित्र हूं और दैवम और इष्टम, ये इष्टम दैवम, जो मुझको इस तरह से अपना मानते हैं, कोई कोई मुझे अपने पुत्र के रूप में मानते हैं, कोई कोई अपने सखा के रूप में, कोई कोई अपने पिता के रूप में या गुरु के रूप में, कोई इष्ट देव के रूप में, कोई पति के रूप में, इस तरह से सुहृद के रूप में जो मानते हैं, तो मां उनको जो भोग मिलता है, जो पद मिलता है, कभी भी काल उसको नष्ट नहीं कर सकता है। काल मेरा आयुध है, अनिमिष काल चक्र, उसको कभी नष्ट नहीं कर सकता। जो हमको अपना प्रिय मानते हैं, सखा मानते हैं, दयावाद मानते हैं, कोई संबंध से, तो उनका पद, उनका जो स्थान है, उस स्थान को, उनके पद को, उनके भोग को काल कभी नष्ट नहीं करता है। नित्य है, नित्य होता है उनका सब कुछ। कितनी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं, हमको जो अपना पुत्र मानते हैं, कई नाम ले रहे हैं, प्रिय आत्मा सुतः सखा सुहृदो गुरु गुरव गुरु सुहृदो दैवम इष्टम, जैसा महम जिनका मैं ही ये सब हूं, प्रिय हूं, आत्मा हूं, सुतश्च, आत्मा का अर्थ भी प्रिय ही होता है, अतिशय प्रिय, सुहृद हूं, सखा हूं, गुरु हूं, सुहृद हूं, अर्थात वे अपनी ओर से मुझे मानते हैं इस गाढ़ संबंध के साथ, तो मेरा काल चक्र उनके भोगों को नष्ट नहीं कर सकता, उनके शरीर को, उनके पद को, ये सब अचल होता है, वे नित्य लीला में आते हैं, मेरे साथ रहते हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद एक वाक्य लिखे हैं कि पति पुत्र सुहृद भ्रातृ पितृवन मित्रवद हरिम ये ध्यायन्ति सदुद्युक्ता तेभ्यो पीह नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को कोई कोई भक्त पति मानते हैं, पति से तत्पर्य हस्बैंड भी है और पति माने मास्टर, अंग्रेजी में क्लियर करना पड़ता है। जो श्री कृष्ण को पति मानते हैं, अपने ये प्रियतम मानते हैं और पुत्र मानते हैं और मित्र मानते हैं, भाई मानते हैं, पितृवन मित्रवद हरि, यहां तक पिता जैसा मानते हैं, मित्र जैसा मानते हैं, और इस प्रकार से कृष्ण के साथ गाढ़ है आसक्ति से ध्यायन्ति सद्योग उद्युक्ता है, सदा उद्यत रह करके, सदा तत्पर रहकर सावधानी के साथ इनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूं, नमो नमः। उन भक्तों को प्रणाम किया जा रहा है जो श्री कृष्ण को पुत्र मानते हैं, पिता मानते हैं, सुहृद मानते हैं, कोई संबंध रखते हैं, बिना संबंध के नहीं। जैसे मैं कभी कभी किसी से पूछता हूं दीक्षा के समय कि आप श्री कृष्ण को क्या मानते हैं, कोई कोई भक्त को जानकारी नहीं होते कह देते हैं भगवान, जो भगवान तो है ही, आप अपना क्या संबंध मानते हैं। दूसरे भक्त कभी बताते हैं हम भगवान को अपना पिता मानते हैं या स्वामी मानते हैं, बहुत कम भक्तों को साहस होता है कहने का कि हम बेटा मानते हैं, माँ यशोदा जैसा। अगर ऐसा लोभ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। या हमें अपना प्रियतम मानते हैं गोपियों जैसे, अपना सखा मानते हैं। प्रायः उत्तर यही आता है कि हम पिता मानते हैं और एकाध आदमी कर्म से निकलता है सखा मानते हैं। एकाध मतलब एक दो तीन ऐसे ठीक है, जो भाव है ही नहीं तो आदमी क्यों बनावटी कहे। परंतु ये भाव तब उत्पन्न होता है जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं। किसी ने पुत्र मान करके उनसे प्रेम किया, किसी ने पिता मान करके किया। श्री कृष्ण को पुत्र भी माना जा सकता है जबकि वे जगत पिता है। गीता में कहते हैं कि सर्व जोनि सुकौन तय मूर्तय संभवंत या तासम ब्रह्म महर जोनि अहम बीज प्रदत्त। हे कुंती नंदन, सभी जोनियों में जितने जीव होते हैं उनकी मां है प्रकृति और मैं पिता हूं। तो जो सबके पिता है ऐसे प्रभु को भी जो पुत्र भाव से मानता हो कितना भाग्यवान है, उसको पुत्र रूप में श्री कृष्ण मिलते हैं। उनको खिलाना पिलाना गोद में रखना और वे कहीं माटी खा ले तो माटी बुलवाना और मटका फोड़ दे तो उनको ही बांधा जाए, ये भाव है। भगवान इसके भूखे हैं वास्तव में। कोई उनको डांटे, उनको कोई डपटे, कोई बांधे, इस इच्छा को पूरा किया मां यशोदा ने। मां ने बांध दिया, मटका फोड़ने लगा। और भक्तों को ये बंधा हुआ रूप बहुत अच्छा लगता है। भक्त ऐसा नहीं चाहते कि नहीं नहीं खोल दिया जाए। कार्तिक में पूरा एक महीना बंधे रहते हैं, बल्कि उनकी आरती की जाती है बंधे हुए भगवान की। खुले भगवान की तो आरती होती ही है, उखल में बंधे हुए भगवान भी पूजे जाते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है बंधे रहिए। तो इस भाव से जो भक्ति करते हैं, कृष्ण को पुत्र मानते हैं, कृष्ण को मित्र मानते हैं, पिता मानते हैं और आत्मा परम प्रियतम मानते हैं, उनका कभी विनाश नहीं हो सकता है। शरीर का तो दूर की बात है, मतलब स्वरूप का। उस स्वरूप में जो उनको पद मिलेगा, जो भोग मिलेगा, कभी काल उसको नष्ट नहीं कर सकता। वो अचल विहार है, अटल विहार है, अविनाशी सदा। ये जो भाव है भगवान के प्रति सदा चलता रहेगा। अगर कोई पुत्र हमको मानता है तो कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि हमारा और उसका संबंध विच्छेद हो जाए। मैं हमेशा पुत्र रहूंगा उसका और मेरा हमेशा पिता रहेगा। ये भगवान का वचन है, अपने मुख से कहा है। मेरे संबंध को, उनके पद को कभी काल नष्ट नहीं कर सकता। भगवान ही काल के नियामक हैं और वही बोल रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान से संबंध स्थापित करके उनकी भक्ति करनी चाहिए। जैसे किसी लड़के को अपने पति के रूप में पा करके तब कन्या उनकी सेवा करती है। जैसे कोई संबंध है ही नहीं, कोई भाव है ही नहीं, किसी की सेवा करेगी? संबंध हो जाता है तो सेवा करती है। तो इसी तरह से श्री कृष्ण को अपना मान लेना चाहिए। पर मानेगा व्यक्ति कैसे? जब सुनेगा श्री कृष्ण के लीलाओं को और भिन्न भिन्न भाव के भक्तों के लीलाएं सुनेगा, खास करके ब्रजवासियों में चार की दासों के साथ भगवान की लीला और सखाओं के साथ, माता पिता के साथ और प्रेयसी जनों के साथ, उसमें से कोई न कोई भाव उद्दीप्त होगा सुनकर, किसी भाव के प्रति लुब्ध हो जाएगा वो। उस भाव के अनुसार वो साधना करेगा। तो यह संबंध भगवान के साथ आज जो मन में भावना की जाती है, एक दिन वही तथ्य बनकर आ जाती है भगवान के धाम में। वो भक्त इस तरह सुखी हो जाता है। तो पति पुत्र सुहृद भ्रातृ पितृवन मित्र वधर्म, जो लोग पति के समान, पुत्र के समान, सुहृद भाई और पिता के समान, मित्र के समान हरि को पूजते हैं, ध्यान करते हैं, उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूं। ये भी परम, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि तो अज्ञान में है, भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, परम ईश्वर को ईश्वर के रूप में नहीं मान रहे हैं, नहीं बल्कि तेभ्यो भी नमो नमस्कार थे कि उन्हीं को प्रणाम है, जो भगवान को अपना पुत्र मानते हैं या स्वामी मानते हैं, पिता मानते हैं, संबंध रख करके भजन, ये ध्यायन्ति ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, वही प्रणाम में है, उनकी मैं वंदना करता हूं। इस तरह से इस रागानुगा भक्ति पर भगवान ने बहुत थोड़ा प्रकाश डाला। यही मत सेवा करे, यही मत जेवा करे रागानुगा भक्ति, श्रीकृष्ण चराणे तारे उपजय प्रीति। इस प्रकार रागानुगा भक्ति द्वारा जो भगवान श्रीकृष्ण की सेवा करता है तो श्रीकृष्ण के चरण कमल में उसका प्रेम उत्पन्न हो जाता है। राग हुआ तो राग, लोभ हुआ तो भी प्रेम ही है, लेकिन उपजय प्रीति का अर्थ है कि प्रेम अपनी चरम अवस्था पर प्राप्त हो जाता है इस भक्ति द्वारा। प्रेमांकुरे रति भाव दुई है तार नाम, जहां है ते बस है कृष्ण भगवान। प्रेमांकुर में ही है, जब प्रेमांकुर उत्पन्न होता है, रागानुगा भक्ति करने से भगवान में प्रेम होता है, प्रेम का अंकुर उगता है, तो इसमें दो बातें, कृष्ण में रति और कृष्ण का भाव। रति भाव दुई है तार नाम, जहां है ते बस है कृष्ण भगवान, और इससे भगवान से कृष्ण वश में हो जाते हैं, प्रेम के भूखे हैं, उस भक्त के वश में हो जाते हैं, उस संबंध के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जहां है ते पाई कृष्ण प्रेम सेवान, यही तो कहिला अभिधेय विवरण। जिसके द्वारा कृष्ण का, कृष्ण की प्रेममय सेवा मिलती है उनकी लीला में, जिसको करने से, उस अभिधेय का मैं वर्णन किया, साधन भक्ति का वर्णन किया, रागानुगा भक्ति का, उस रागानुगा भक्ति का वर्णन किया, ये भी अभिधेय है। अभिधेय साधन भक्ति सुने जेई जान, अचिरा ते पाए से कृष्ण प्रेम धान। अभी इस अध्याय में जो वर्णन किया गया, इसको सुनने वाले को क्या लाभ मिलेगा, ये बता रहे चैतन्य महाप्रभु। अभिधेय साधन भक्ति सुने जेई जान, जो भी व्यक्ति सुनता है इसको प्रेम से, तो अचिरात पाए से ही कृष्ण प्रेम धान। वो अचिरात अल्प समय में ही श्री कृष्ण का प्रेम रूपी धान पाया जाता है। श्री रूप रघुनाथ पद जारयास, चैतन्य चरतामृत कहे कृष्णदास। श्रील रूप गोस्वामी पाद और रघुनाथ दास गोस्वामी में जिसकी आशा है, अर्थात मैं उनके आश्रय में हूं। श्रीपद रूप गोस्वामी और श्रीपद रघुनाथ दास गोस्वामी में जिसकी आशा है, जो आश्रय है हमारे, ऐसा कृष्णदास चैतन्य चरतामृत कह रहा है। चैतन्य चरतामृत कहे कृष्णदास। रघुनाथ दास गोस्वामी का संग कुछ हुआ था, उनके मुख से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सुना था चैतन्य महाप्रभु की लीला, अंत लीला खासकर। जगन्नाथपुरी में रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वहां से भगवान ने भेजा था इनको ब्रज में, तो अंत लीला पर पूरा प्रकाश डाला था रघुनाथ दास गोस्वामी ने, बताया था। तो प्रत्येक अध्याय के अंत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही कहते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे जारयास, चैतन्य चरतामृत कहे कृष्णदास। इस तरह से अभिधेय नामक शीर्षक पूरा हुआ। 23वें अध्याय में प्रयोजन का वर्णन किया गया, संबंध का वर्णन हो चुका था और अभिधेय का वर्णन 22वें अध्याय में, और 23वें में प्रयोजन का वर्णन है। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत पूरा हुआ है कल्याण। हरे कृष्ण।